ओम शांति। 24 जनवरी 2024, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे, बाप की याद रहेगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। प्रश्न, मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं, मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का, कौन सा ऐसा रास्ता है जिसका बिल्कुल पता नहीं, ऐसा कौन सा रास्ता है? बाप से मिलने का, परमपिता परमात्मा से कैसे मिले ये दुनिया में कोई भी नहीं जानता। जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का किसी को भी पता नहीं है। सिर्फ शांति शांति करते रहते हैं, शांति हो जाए, विश्व में शांति हो जाए, उसके लिए खूब प्रचार करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, जानते नहीं कि विश्व में शांति कब थी। ये किसी को भी नहीं पता कि विश्व में शांति थी जो तुम चाहते हो। ये कोई चीज चाही जाती है, उसको किसी ने टेस्ट किया है तब तो उसकी चाहन रखेगा ना। भाई किसी ने लड्डू खाया है तो लड्डू मांगेगा, जिसने कभी जीवन में लड्डू खाया ही नहीं वो लड्डू मांगेगा कैसे, उसे पता ही नहीं है। अब यही बात बाबा पूछ रहे हैं कि विश्व में शांति कब थी, तुमने कभी टेस्ट किया है जिसको तुम डिमांड कर रहे हो, क्या होती है शांति, कैसे हुई थी वो शांति, ये आपको पता है? जब पता ही नहीं तो करोगे कैसे? लड्डू बनाना नहीं आता, खाना खाया नहीं, लड्डू बनाया नहीं, तो आप उसको मांगेंगे कैसे? आप मांग रहे हैं तो कभी आपने उसका इस्तेमाल किया है, टेस्ट किया है, परंतु अब क्या हो गया है, भूल गए हो, अब भूल गए हो। अब कोई आके याद दिलाए तो मिले ना, अब याद कौन दिलाए? जिसको याद हो, अब वो याद दिलाने वाला काम सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही कर सकता है। बाकी इस देह में आने के कारण, देह के बंधन में आने के कारण सब कुछ भूल जाते। ये एक लॉ है, ये एक नियम है। आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, पिछले जन्म में क्या हुआ था भूल गए। यदि उसे याद रहे तो ना इधर जी सके ना उधर जी सके। उसके बावजूद भी किसी किसी को, हजारों लाखों में से किसी एक आधे को कोई कोई बातें याद रह जाती हैं, वो भी ड्रामा अनुसार उनका पार्ट है, तो वो आकर के बताते, पुनर्जन्म वाले बताते। कोई कोई होते ना, लाखों करोड़ों में कोई एक आधा केस ऐसा मिलता है जिसको पिछले जन्म की बातें याद होती हैं, और वो भी भूल जाते हैं जैसे ही वो काम पूरा हुआ, क्योंकि वरना ना इधर जी सकता है ना उधर जी सकता है। और कैसे हुई, तुम पूछ सकते हो कि आपने विश्व में शांति देखी है, शांति कैसे होती है? विश्व में शांति तो एक बाप के द्वारा ही स्थापन हो रही है। आओ आकर समझो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पहले पहले तो ये दृष्टि पक्की करो कि हम आत्मा हैं, हम भाई भाई को देखते हैं। जैसे बाप कहते हैं मैं बच्चों आत्माओं को देखता हूं, आत्मा ही शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा सुनती है, बोलती है, आत्मा का तख्त है ब्रिकुटी, तो बाप आत्माओं को देखते हैं, ये भाई भी अपने भाइयों को देखते हैं, भाई भी अपने भाइयों को देखते हैं, तुमको भी भाइयों को देखना है। पहले ये दृष्टि पक्की करो, सबसे पहले पक्की ये दृष्टि चाहिए कि हम आत्मा हैं और सब आत्मा है, देह की दृष्टि से देखना ही नहीं है। फिर क्रिमिनल ख्यालात बंद हो जाएंगे, फिर क्रिमिनल ख्यालात बंद हो जाएंगे, ये आदत पड़ जाएगी, यह आदत पड़ जाएगी। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही चुरपुर करती है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही चुरपुर करती है। चुरपुर करना माना हिलना डुलना। आत्मा नहीं है तो इस शरीर की धड़कन भी ना चले, इस धड़कन को चलाने का काम भी आत्मा करती है। कुछ भी नहीं कर सकता ये शरीर, हिल भी नहीं सकता। ये पक्की, ये दृष्टि पक्की होने से और ख्याल सब उड़ जाएंगे। ये है नंबर वन सब्जेक्ट। इसमें दैवी गुण भी ऑटोमेटिकली धारण होते रहेंगे। कर्म इंद्रियां चलाए मान देह अभिमान में आने से होती है। देह समझा तो देह की तरफ आकर्षित हुआ, आत्मा समझेंगे तो देह की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते। क्या है ये? मिट्टी है। शमशान में जाने पर समझ में आता है क्या है ये? मिट्टी है। इसको उठाओ और जला दो और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कितना गहरा संबंध हो, कितना प्यारा संबंध हो, कितना रोटी काट के खाते हो, एक ही एक नवाला बांट बांट कर खाते हो, हाँ बस अब इसका कोई मतलब नहीं। कर्म इंद्रियां चलाए मान देह अभिमान के कारण होती है। देही अभिमानी बनने की बहुत कोशिश करो, ये नहीं कि एक बार हमने कोशिश की क्या करूं फिर बाद बाद देह अभिमान आ जाता है। देही अभिमानी बनने की कोशिश करो तो तुम्हारे में ताकत आएगी। सर्वशक्तिमान बाप की ताकत से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। बाप तो है ही, बाप तो है ही सतो प्रधान। तो पहले पहले ये दृष्टि पक्की हो, पहले पहले ये दृष्टि पक्की हो तब समझे कि हम आत्म अभिमानी हैं। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी में रात दिन का फर्क है, रात दिन का फर्क है। हम आत्माओं को अब वापस घर जाना है। आत्म अभिमानी बनने से ही हम पवित्र सतो प्रधान बनेंगे। यह प्रैक्टिस करने से विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। मनुष्य कहते हैं धरती के सितारे, मनुष्य कहते हैं धरती के सितारे, बरोबर हम आत्मा सितारा हैं, बरोबर हम आत्मा सितारा हैं। ये शरीर मिला है कर्म करने के लिए, हम आत्माओं को ये शरीर मिला है कर्म करने के लिए। अब हम तमो प्रधान बने हैं, मिला है किसी और ने दिया है या हमने बनाया है? हमने बनाया है, हमारे कर्मों के अनुसार मिला है। जैसे हमने श्रेष्ठ कर्म किए हुए थे, गंदे कर्म किए हुए थे, उसी प्रकार से हमने अपना शरीर बनाया है, अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए। अब हम तमो प्रधान बने हैं, फिर हमको सतो प्रधान बनना है। बाप को आना भी पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ऐसे कभी नहीं कहना कहेंगे कि क्राइस्ट के शरीर में आते हैं, ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट के शरीर में आते हैं। वे आते ही रजो प्रधान में है, वे आते ही रजो प्रधान में है। कोई बुद्ध व क्राइस्ट के तन में भगवान आए ये तो हो ना सके, ये तो हो ना सके। वे आते ही एक बार है, वे आते ही एक बार हैं और आते हैं पुरानी दुनिया में नई दुनिया स्थापन करने, तमो प्रधान दुनिया को बदल सतो प्रधान बनाने। क्यों आते हैं? पुरानी दुनिया में आते हैं, पति दुनिया को पावन बनाने के लिए आते हैं। वे जरूर संगम पर आएंगे, तब आएंगे ना जब कलयुग खत्म होने वाला हो और सतयुग शुरू होने वाला हो। और कोई समय पर वे
संगम के ऊपर है तो सभी बोझ भी है, क्रिश्चियन भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, है तो सभी धर्म अभी
हाँ इसलिए तो दुनिया वाली गीता में भी ये बात लिखी गई, मैं आता हूँ अधर्म को मिटाकर पुनः सनातन धर्म की स्थापना करने, ठीक है। तो जब चार सारे अधर्म बन जाते हैं ना, आज जितने भी धरती पर धर्म है सारे के सारे अधर्म बन गए हैं, क्योंकि सत्य को जानते ही नहीं, सत्य को ना जानने के कारण सारे संसार के धर्म अधर्म बन गए हैं। अब परमात्मा आकर सारे अधर्म खत्म करके पुनः सनातन धर्म की स्थापना करते हैं।
तो बीजेपी कर रही है सनातन धर्म की प्रचार कर रही है,
सनातन धर्म का नहीं कर रही है, वो हिंदू धर्म का कर रही है। हिंदू धर्म माना तमो प्रधान,
हिंदुस्तान के नाम से हिंदू कह दिया, लेकिन उनका
मेरे भाई यही बात समझने वाली है कि हिंदू धर्म ये मुसलमानों ने आकर के दिया, इससे पहले हिंदू शब्द नहीं है, पहले भारत है, जो अब भारत इन्होंने नाम रखा है, पहला नाम भारत ही
है,
परंतु बाद में अंग्रेजों ने आए उन्होंने इसका नाम इंडिया रख दिया भारत की जगह पर, ठीक है। तो इंडिया हो गया नाम, अब जो है ना फिर से दोबारा भारत रख दिया, ठीक है। अच्छा नाम तो भारत हो गया, पर तो किसी के धर्म तो नहीं है ना, हिंदू माना काफिर, वो हमें हिंदू कहते हैं, वो काफिर कहते हैं अपनी भाषा में कि ये काफिर है, ये भगवान को नहीं मानते, क्योंकि ये कुरान को नहीं मानते, जो कुरान को नहीं मानता वो हिंदू काफिर, और जो कुरान को मानता है वो मुसलमान। ये नाम मुगलों ने दिया, और फिर उन्होंने कहा कि यदि आप मुसलमान नहीं बनते हो तो आपको जजिया कर देना होगा। जजिया कर ये होता है कि मुसलमानों का कोई त्योहार आएगा तो आपको टैक्स देना होगा, और यदि आप मुसलमान बन जाओ तो तुम्हें टैक्स नहीं देना। तो इन्होंने कहा जी गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, हम आपको टैक्स देंगे, ये लो तुम पैसे ले लो हमारे से। तो जो गरीब थे वो मुसलमान बनते गए, और जो अमीर थे वो टैक्स नहीं दे सकते थे, और अमीर थे वो टैक्स दे सकते थे, उन्होंने टैक्स दे दिया, उन्होंने अपने धर्म का परिवर्तन नहीं किया, ये नियम था, इसी कारण सारे मुसलमान बन गए जजिया कर के कारण। ये जजिया टैक्स लगाया था मुसलमानों ने आकर, उन्होंने कहा कि ये हिंदू है ना, वो हिंदुओं को टैक्स देना होगा।
मुस्लिम से तो ज्यादा क्रिश्चियनों में जा रहे हो अपने जो,
देखिए क्रिश्चियंस जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने क्रिश्चियंस में बदलना शुरू किया, जब जिसकी पावर आती है वो अपना बदलने की कोशिश करता है। अब ये हिंदू हिंदू राजा आ गया तो ये हिंदू की तरफ सबको बदलने की कोशिश करेगा, सारे मुसलमानों को हिंदू बनाने में लगे रहेंगे। अब ये काम तो राजनेता करते रहेंगे ना, जो भी उनका पार्ट है, हर एक आत्मा का भी पार्ट है कि वो अपना पार्ट बजाएंगे। तो हमारी बात यह थी कि जब अनेक धर्म हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म है, चाहे वो मुस्लिम है, क्रिश्चियंस हैं, बौद्धिस्ट हैं, जैनी हैं, या जो भी है, इस समय सारे धर्म भ्रष्ट हो चुके हैं, चाहे वो सनातन धर्म हो चाहे कोई भी हो, सारे धर्म जो दुनिया में चले आ रहे थे, सनातन धर्म हिंदू हो गया, भ्रष्ट हो गया, चाहे सिख धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, सब। अब परमात्मा आए हैं सब धर्मों का झमेला खत्म कर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करना, दुनिया स्थापन। अब उनको आकर, परमात्मा को आकर नई दुनिया स्थापन करनी है, उनको कहा जाता है, उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। ड्रामा अनुसार संगम का भी नाम है। श्री कृष्ण को तो बाप व पतित पावन नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को ना तो बाप कह सकते हैं ना पतित पावन कह सकते हैं, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है, कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। बाबा समझाते रहते हैं, पहले पहले कोई को एम ऑब्जेक्ट समझाओ, कोई भी आए उसको बताओ कि हमारे इस संस्था का एम ऑब्जेक्ट क्या है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो एक धर्म एक राज्य था, एक धर्म था एक राज्य था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, एक ही अद्वैत धर्म था, हेवन स्थापन करना तो बाप का ही काम है। कैसे करते हैं वे भी क्लियर है। संगम पर ही बाप आकर समझ जाते हैं कि देह के सब धर्म छोड़ अपने को लक्ष्मी, अपने को आत्मा समझो। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ही सारी समझानी देनी है। शिव बाबा का चित्र भी है, महिमा वाला चित्र बहुत अच्छा बना हुआ है। ये है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा, राधे कृष्ण की कथा नहीं, राधे कृष्ण की कथा नहीं कहते हैं, सत्य नारायण की कथा तुमको नर से नारायण बनाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं। पहले तो छोटा बच्चा होगा, छोटे बच्चे को नर कहे, नर नहीं कहेंगे, कहा जाता है ना, छोटे बच्चे को नर नहीं कहा जाता, नर नारायण, नारी लक्ष्मी कहा जाता है। अब कृष्ण को नारायण नहीं कह सकते, कैसे बात को चेंज, कैसे बात को समझाया, वरुण बात पत्नी कब कब चुपके से बाबा कह जाता है। कृष्ण को नारायण नहीं कहेंगे,
तो कृष्ण ही नारायण बनता है।
कृष्ण जब पूरा नर बनेगा बच्चे को, इसलिए बाबा स्पष्ट किया कि बच्चे को नर नहीं कहेंगे, नर बड़े को कहा जाता है, नर नारायण, नारी लक्ष्मी। कृष्ण बच्चा है तो कृष्ण को नारायण नहीं कहेंगे। जब वो परम धाम जाएगा कृष्ण की आत्मा, वापिस आकर अपने शरीर को पहनकर खड़ी होगी, तब उसका नाम नारायण होगा। जब वो नर बनेगा, पूरा मनुष्य मतलब प्रौढ़ अवस्था में आएगा। तुम बच्चों को इस चित्र पर ही समझाना है, सन्यासी तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर ना सके। शंकराचार्य तो आते हैं रजो प्रधान, शंकराचार्य आता है रजो प्रधान के समय, सतयुग है सतो प्रधान, ठीक है, और त्रेता है रजो, रजो प्रधान, और ये जो द्वापर आ जाता है ये रजो प्रधान हो जाता है, ठीक है, सतयुग त्रेता सतो और रजो, और द्वापर हो जाती है रजो प्रधानता, ठीक है, और तमो प्रधान हो जाता है कलयुग। चलो रजो मतलब रजो द्वापर युग में, क्योंकि बाकी सब द्वापर में आते ना धर्म, ये रजो राज योग सिखा ना सके। बाप आते हैं संगम पर, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। ऊपर त्रिमूर्ति भी है, पहले जो चित्र बने हुए थे ना, ऊपर त्रिमूर्ति का, नीचे सृष्टि चक्र का, ऊपर त्रिमूर्ति भी है, ब्रह्मा योग में बैठा है, ब्रह्मा योग में बैठा है। शंकर की तो बात ही अलग है, देखेंगे त्रिमूर्ति में, ब्रह्मा योग में बैठा है, शंकर भी बैठा है और विष्णु को खड़ा कर दिया, विष्णु को खड़ा कर दिया। और यहाँ क्या बात की है, देखो कैसे चुपके से एक लाइन में बात कर दी कि ब्रह्मा योग में बैठा है, शंकर की तो बात ही अलग है, क्योंकि शंकर तो कोई है ही नहीं जो आलती पालती लगा के बैठे। अब यहां पर ऐसे कह दे तो सारे उड़ जाए,
भैया
हाँ ये क्या बिठाया, इसलिए मतलब यहाँ पर देखो कैसे गोलमोल बात करके बाबा निकल जाता है ना, शंकर की तो बात ही अलग है। अब बैल पर सवारी होना से कि बात कहां दूसरी तरफ कन्वर्ट कर दी, ये कहना चाह रहा है कि शंकर है ही नहीं, क्योंकि अलग अलग मुरली में बता दिया कि शंकर है नहीं, पर तो यहाँ कहता है शंकर की तो बात ही अलग है, बैल पर सवारी हो ना सके, कैसे उसको निर्णय किया कि वो है नहीं। बाप को तो यहाँ आकर समझाना है, विनाश भी यहाँ ही होता है। लोग कहते हैं विश्व में शांति हो, वे तो होने वाली है, वो तो होने वाली है, तब बुद्धि में आता है चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। जो शिव की वा देवताओं की भक्ति करते हैं उनको समझाना है, जो शिव की भक्ति करते हैं, जो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं उनको समझाना है, वो जल्दी समझेंगे, वो झट मानेंगे। बाकी नेचर व साइंस आदि को मानने वालों की बुद्धि में जल्दी से बैठेगा नहीं, दूसरे धर्म वालों की भी बुद्धि में नहीं आएगा। जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो निकल आएंगे, उनको समझ में आ जाएगा, वो आ जाएंगे। उनकी क्या फिक्रात, करनी है। देवी देवता धर्म वाले व बहुत भक्ति करने वाले अपने धर्म में बहुत पक्के होंगे। तो देवताओं के पुजारियों को समझाओ, बड़े आदमी कभी आएंगे नहीं, बड़े आदमी नहीं आएंगे। समझो बिरला है, इतने मंदिर बनाते हैं, उनके पास ज्ञान सुनने की फुर्सत ही कहां है? उनके पास ज्ञान सुनने की फुर्सत ही कहां है? हाँ, सारा दिन बुद्धि धंधे में लगी रहती है, पैसा कमाओ और मंदिर बनाओ, बस। पैसे बहुत मिलते हैं तो समझते हैं मंदिर बनाने से धन मिलता है, तो मैं मंदिर बनाता हूं ना तो भगवान मेरे ऊपर खुश हो जाता है, मेरा धंधा अच्छा चल जाता है। लोगों के दिमाग में यही है कि मंदिर में हम दान करके आते हैं ना, बस हमारा धंधा और अच्छा, हम इतना करते हैं हमारे पास और आ जाता है, इतना करते हैं और आ जाता है। भगवान को देते रहो और भगवान से लेते रहो, बस। मंदिर बनाने से धन मिलता है, ये देवताओं की कृपा है। तुम्हारे पास कोई आए तो लक्ष्मी नारायण का चित्र उन्हें दिखाओ, बोलो तुम विश्व में शांति चाहते हो, विश्व में शांति चाहते हो तो विश्व में शांति का राज्य इस दुनिया में था, विश्व में शांति चाहते हो तो विश्व में शांति का राज्य इस दुनिया में था। फलानी तारीख से फलानी तारीख तक सूर्यवंशी राजधानी में बहुत शांति थी, सूर्यवंशी राजधानी में बहुत शांति थी। फिर दो कला कम हो जाती है, फिर दो कला कम हो जाती है। इस चित्र पर ही सारा मदार है। अब तुम विश्व में शांति चाहते हो, कहाँ चलेंगे? शांति, चलो शांति चाहते हो तो कहाँ जाओगे, कहाँ चलोगे? घर को तो जानते नहीं हो, परम धाम को तो जानते नहीं हो। ब्रह्मा कुमार जानते हैं कहाँ है परम धाम, कहाँ है, कहाँ रहते हैं, कहाँ है? ये तो पूछा जा रहा है, परम धाम, परम अवस्था। मतलब मैक्सिमम भाई बहने भी ये बात नहीं जानते कि परम धाम परम अवस्था है, बाकी वो किसी जगह का नाम नहीं है। शांति धाम और सुख धाम, सॉरी सूक्ष्म वतन भी हमारी पर सूक्ष्म अवस्था है, वो भी कोई ऐसी जगह नहीं है। दुनिया वाले घर को जानते तो है ही नहीं कि परम धाम क्या है। हम आत्मा शांत स्वरूप है, मूल वतन में रहते हैं, वही शांति धाम है। वे इस दुनिया में नहीं है, वे इस दुनिया में क्यों नहीं है इस दुनिया में वो, जबकि हम आत्मा यही होते हुए फिर इस दुनिया में क्यों नहीं है? प्रश्न उठेगा, भाई बहन पूछेंगे, ठीक है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा इस दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं होता और दुनिया का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे कोई हमारे साथ रह रहा हो और यदि वो हमारे बीच में कोई काम में ना आता हो, कहते भाई ये जो है ना इस दुनिया से अलग है, इसको छोड़ दो भाई, ये अपनी मर्जी से जीता है, अपनी मर्जी हिसाब से जीता है, रह हमारे साथ रहा है परंतु वो जी अपने हिसाब से रहा है, तो उसे कहते ये इस दुनिया में नहीं है। फिर भी उसका इस दुनिया से काम होता है, परंतु आत्मा का जब तक पार्ट नहीं होता तब तक वो शरीर में नहीं आती, चाहे वो कहीं भी रहे। तो इस दुनिया से अलग है ना, इस दुनिया से उसका कोई काम नहीं है। उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया, क्योंकि हम उसका आकार बना नहीं सकते, हम उसको देख नहीं सकते। वो दुनिया इस दुनिया से क्या है, अलग। ये है साकारी दुनिया, वो है निराकारी दुनिया, क्योंकि इस दुनिया हम देख ही नहीं सकते उसको, उसका आकार बना ही नहीं सकते, बेशक वो यही हो। बाकी विश्व इसको ही कहा जाता है जो दिखाई देता है। विश्व में शांति नई दुनिया में होगी, विश्व के मालिक ये बैठे हैं, गरीब इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। कोई कहते हैं ये रास्ता बहुत अच्छा है, हम रास्ता ढूंढते थे, रास्ते का मालूम ही नहीं था, ढूंढेंगे क्या, ढूंढेंगे क्या? ऐसा कोई नहीं जिसको बाप और जीवन मुक्ति के रास्ते का पता हो, जिसको बाप और जीवन मुक्ति के रास्ते का पता हो। शांति शांति कहते रहते हैं, परंतु परंतु शांति कब थी, कैसे हुई, किसको भी पता नहीं। कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, उनसे पूछना चाहिए तुमने कभी विश्व में शांति देखी है कि विश्व में शांति कैसे होती है। तुम प्रजा आपस में क्यों मूंझते हो, कॉन्फ्रेंस करते रहते हो, जवाब कहां से मिलता नहीं। विश्व में शांति तो अब बाप द्वारा स्थापन हो रही है। तुम कहते हो क्राइस्ट से 3000 साल पहले हेवन था। 3000 साल पहले क्या था? हेवन था। तो वहां ही शांति थी। अगर वहां भी अशांति होती तो बाकी शांति कहां मिलेगी भाई? फिर शांति कहां मिलेगी? अच्छी तरह से समझाना है। वहां शांति भी कौन सी थी? एक शांति होती है परम धाम में, जहां संकल्प भी नहीं होते, परंतु एक शांति होती है सुख धाम में, वहां संकल्प भी होती है, बोल भी होता है, कर्म भी होता है, परंतु उनके जो संकल्प हैं वो सर्वांत सुखाय हैं, सबको सुख देने वाले होते हैं, सबका कल्याण करने वाले होते हैं, जिसके कारण मन शांत रहता है, हलचल में नहीं आता है। तो वो शांति सतयुग की अलग है और शांति धाम की शांति अलग है। अच्छी तरह से समझाना है, बाबा कहते ये बातें अच्छी तरह से समझानी है। इस समय तो तुमको इतना समय बात करने नहीं देते, अब तो कोई तुम्हें बात करने नहीं देता, इस समय सुनने को तैयार नहीं है कोई, क्योंकि अभी उनके सुनने का समय नहीं आया, हमारे कजन भाई आए, देखा ना दुख दो ना सुख लो, सुख दो सुख लो, कहते ये मुझे समझाओ। मैंने कहा अच्छा समझाता हूँ। कहता है नहीं, हमें जाना है भाई, इतना टाइम नहीं है। मतलब सुनना चाहते है, जानना चाहते है कि क्या है, पर तू सुनने का टाइम नहीं। सुनने का सौभाग्य चाहिए, जिसके भाग्य में होगा वही सुनेगा ना। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हो, बच्चे ही बाप से सुनने के हकदार बनते हो, बाप बिगर कोई सुना अनसुना सुना ना सके, सिवाय परमात्मा के कोई ये सत्य रास्ता सुना नहीं सकता। बाप तुम बच्चों को ही सुनाते हैं, ये है ही रावण राज्य, तो यहाँ शांति कैसे हो, यहाँ शांति कैसे हो सकती है? रावण राज्य में सब पतित है, पुकारते हैं कि हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया तो इन लक्ष्मी नारायण की थी, राम राज्य और रावण राज्य में कितना फर्क है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर होते हैं रावण वंशी। इस समय है कलयुग। रावण संप्रदाय बड़े बड़े लोग भी एक दो को गुर गुर करते रहते हैं, हम तेरे को उड़ा देंगे, तेरा कर देंगे काम। बहुत अहंकार है कि मैं फलाना हूँ। तो इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज है, बोलो इनके राज्य में ही विश्व में शांति थी, कोई और धर्म नहीं था, विश्व में शांति सो तो यहाँ ही होती है। तो मुख्य ये चित्र है, बाकी ढेर चित्रों पर समझाने से मनुष्यों के ख्यालत और तरफ चले जाते, जो समझा है वे भी भूल जाते हैं। तब कहा जाता है टू मेनी कुक्स, और बहुत ज्यादा कुक हो ना तो भोजन का बेड़ा गर्क कर देते हैं। मतलब यदि ढेर सारे हलवे इकट्ठे हो जाए ना बनाने के लिए, तो बस वो कहेगा ऐसे बनाओ। मतलब अलग अलग सलाह देने वाले ढेर सारे आ जाए तो काम तो बिगड़ेगा। बहुत चित्र होते हैं और हंसी कुड़ी के मॉडल आदि अथवा डायलॉग आदि होते हैं, तो मूल बात बुद्धि से निकल जाती है। अब जैसे माउंट आबू में प्रोग्राम्स करते हैं, उसमें सेशन होगा छोटा, डांस होगा, स्वागत होगा, ये होगा, उनका भाषण होगा, और जो मूल बात होती है, जो उनको ज्ञान देने वाली बात है, वो उसमें क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, उसका इतना प्रभाव नहीं रहता। ये प्रभाव रहता है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम हो, परंतु क्या हुआ, क्या मिला, वो भाग्य जिसका जो ले गया। कोई विरला ही समझ पाते हैं कि बाप ये स्थापना कर रहे हैं। 84 जन्म भी इसके लिए ही हैं। दिखाएंगे जरूर एक का, सबका कैसे रखेंगे। शास्त्रों में भी एक अर्जुन का नाम रखा है ना, शास्त्रों में भी एक अर्जुन का नाम रखा है ना, अर्जुन को ज्ञान सुनाया ना, बाकियों को तो ज्ञान नहीं सुनाया ना। स्कूल में मास्टर एक ही थोड़े को पढ़ाएंगे, एक थोड़े को ही पढ़ाएंगे, ढेर सारे होंगे ना पढ़ने वाले, ये भी स्कूल है। तो टीचर है शिव बाबा, सबको पढ़ाएंगे ना, उनके लिए कोई अपना पराया तो है ही नहीं। ये सबसे अच्छा है पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाना चाहिए, और फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे तुम शांति मांगते हो, वे कल्प कल्प बाप द्वारा ही स्थापन होती है। तुम इस चक्र को जान गए हो, पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, तुम भी क्या थे, तुच्छ बुद्धि थे, अब बाप स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। अब बाप क्या बनाते हैं, हमें स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। लिखना चाहिए, सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई भी किसकी सदगति कर नहीं सकते, विश्व में शांति कर नहीं सकते, बाप ही सब कुछ कर रहे हैं। कौन कर रहा है, बाप ही सब कुछ कर रहे हैं, याद भी उनको ही करते हैं। मुख्य चित्र ये दोनों है, मुख्य चित्र ये दोनों है, इससे हिलना नहीं चाहिए इन चित्रों से। कौन से चित्र है, त्रिमूर्ति का, लक्ष्मी नारायण का, थे ना, ये चित्र जो है ना दोनों, हिलना नहीं चाहिए। जब तक पूरा ना समझे, ये नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा, टाइम वेस्ट हो जाता है। देखो बुद्धि में नहीं बैठता तो चला देना चाहिए, यदि सामने वाले को नहीं समझ में आता तो उसको को ठीक है जी फिर आप आना, उसको चला दो, जा भी तू मौज कर, जब तेरा टाइम होगा तो आ जाइए। इसमें समझाने वाला बहुत अच्छा चाहिए, अगर माता हो तो बहुत अच्छा, इसमें कोई नाराज नहीं होगा। ये तो सब जानते हैं कि कौन कौन समझाने में तीखे हैं, जो इशारे हैं, जो समझदारी से समझा सकते हैं उनको आगे करो। मोहिनी है, मनोहर है, गीता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, तो पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पर एकदम पक्का कराना चाहिए। बोलो इन बातों को अच्छी रीति समझो, तब शांति की दुनिया में जा सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही मिल जाएंगी, मुक्ति में तो सब जाएंगे, फिर आएंगे नंबर वार पार्ट बजाने, फिर आएंगे नंबर वार पार्ट बजाने। समझाना भी भक्के से है, बड़ा नशे से, बड़ी खुशी से समझाना है, ये नहीं कि डरते डरते कुछ करते रहे ना। नंबर वन ये चित्र है, विश्व में शांति के मालिक यही थे, कौन, लक्ष्मी नारायण। ये बातें समझदार की बुद्धि में बैठती हैं, भल अच्छा अच्छा कहते हैं, पांव में गिरते हैं, परंतु बाप को थोड़े ही जाना, आपको तो नहीं जाना ना, उनको भी माया छोड़ती नहीं है। बाप जो इतना ऊंच बनाते हैं उनको तो कितना याद करना चाहिए, इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ अंदर आने से खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, मैं ये बनता हूँ, मैं अंदर हिस्ट्री हॉल में आता हूँ, इन लक्ष्मी नारायण को देखता हूँ, सामने लक्ष्मी नारायण की ट्रांस लाइट रखी है, इन्हें देखकर बड़ा खुश होता हूँ। ओ ओ बाबा हमको ये बनाते हैं, वाह बाबा वाह, लौकिक घर में किसका बाप बड़े मर्तबे पर होता है तो बच्चों को खुशी होती है, मेरा बाप वजीर है। तुमको कितनी खुशी है, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाप हमको ये बनाते हैं, परंतु माया भुला देती है। माया बुला देती है, बड़ा सामना करती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। आत्म अभिमानी भाव, भाई भाई को देखो तो स्त्री को भी आत्मा के रूप में ही देखेंगे, स्त्री को भी आत्मा के रूप में ही देखेंगे। क्रिमिनल आई होगी नहीं, गंदी नजर होगी नहीं। मनसा तूफान तब आते हैं जब तुम भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते। इसमें बड़ी मेहनत है, प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। आत्म अभिमानी बनना है, कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी। सर्विस करने वाले बच्चे ही बाप की दिल पर चढ़ सकते हैं, भाव देरी से आते हैं, वे भी गैलप कर सकते हैं, पीछे जा सकते हैं। तुम बच्चों ने पहले की हिस्ट्री तो सुनी है, पहले की हिस्ट्री तो सुनी है कि इन्होंने घर बार कैसे छोड़ा। ब्रह्मा बाबा रात को जो आए थे, माताएं घर छोड़ करते रात रात में भागे, फिर इतने बच्चों को पाला। इसको कहा जाता है भट्टी, भट्टी। फिर भट्टी से नंबर वार निकले, सारे तो एक जैसे नहीं निकले। ये तो वंडर है ना, जो बाबा तुमको वंडरफुल स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, गॉड फादर तुमको पढ़ाते हैं, कितना साधारण है, कितना रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं और बच्चों को कहते हैं नमस्ते। बाबा बच्चों को क्या कहते हैं? नमस्ते। बच्चे तुम मेरे से भी ऊंचे जाते हो, तुम ही कंगाल से डबल सिरताज विश्व के मालिक बनते हो। तो बाप बड़ी रुचि से आते हैं, अनगिनत बार आए होंगे, एक दो बार नहीं। आज तुम मुझ राम से राज्य लेते हो, मुझ राम से राज्य लेते हो, ये है राम। फिर रावण से तुम राज्य हराते हो, यही खेल है। अच्छा, मीठे मीठे लक्की सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, आत्मा को सत्व प्रधान बनाने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से वर्षा ताकत लेनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, हम आत्मा भाई भाई हैं, हम आत्मा भाई भाई हैं। ये प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। बाप और लक्ष्य, लक्ष्मी नारायण के चित्र पर हर एक को समझाओ, एक बाप का चित्र हो और एक लक्ष्मी नारायण का, विस्तार से समझाओ। बाकी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। वरदान, धरनी नब्ज और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भाव। बाप का ये नया ज्ञान सत्य ज्ञान है, इस नए ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापन होती है। ये अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आते ही किसी को नए ज्ञान की नई नई बातें सुनाकर मुझा दो। धरनी नब्ज और समय सब देख करके ज्ञान देना, ये नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा को की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो, तब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। स्लोगन है, मेरा कहना माना, छोटी बात को बड़ा बनाना, बड़ी बनाना। मेरा कहेंगे तो छोटी सी बात भी बड़ी हो जाएगी, तेरा कहना माना पहाड़ को भी, जैसे पहाड़ जैसी बात को भी रुई बना देना, हल्का कर देना। क्योंकि मेरे का बोझ ज्यादा, तेरे का बोझ हल्का हो जाता है, वो बोझ ही नहीं है। अव्यक्त मास में अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता सिद्धि का अनुभव करो। जिम्मेवारी का को निभाना ये भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो। इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, ये करूं वा नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये महसूसता अर्थात बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा, कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ ना हो, कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ ना हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।